आज है 3 जनवरी दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। हिंसक हमले के खिलाफ दलित संगठनों ने महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन किए। मुंबई में दुकानें और बाजार बंद।
एकदम प्रभावित हो गया है और रोटेशन एकदम खराब हो गया है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई है, दवा के लिए सब परेशानी।
पाकिस्तान को मदद बंद करने की अमरीकी घोषणा के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने ये जवाब दिया।
धमकी की जबान इस्तेमाल की जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत भी और अफवाज भी उसके ऊपर बहरहाल जो है वो उनको सख्त तरीन तहफ्फुज़ात।
और सवाल ये कि दुनिया के कई देशों में क्या कभी अलगाववाद खत्म होगा?
अलगाववाद बना रहेगा संसार में हमेशा, क्योंकि हमारी नस्लें एक नहीं है, हमारी भाषाएं एक नहीं है, हमारे धर्म एक नहीं है।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के महाराष्ट्र में दलित संगठनों के प्रदेश बंद के आह्वान का मुंबई और राज्य की अन्य जगहों की परिवहन व्यवस्था और कामकाज पर सीधा असर पड़ा। बंद के मद्देनजर स्कूलों को बंद कर दिया गया। ट्रेन सेवाएं भी कुछ घंटों के लिए ठप रहीं। कई जगहों से आगजनी और गाड़ियों को आग के हवाले करने की भी खबरें मिली हैं और कुछ इलाकों में सुरक्षा इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। पुणे के नजदीक कोरेगांव भीमा में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। बाद में मंगलवार को कई दलित संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन को फिर से शुरू कर दिया है। स्थानीय समयानुसार बुधवार दोपहर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से फोन पर बात की। ये बातचीत करीब 20 मिनट तक चली। इससे पहले उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने 9 जनवरी को दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक की पेशकश की थी और कहा था कि उनका देश विंटर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना चाहता है। दोनों देशों के बीच इस हॉटलाइन को फरवरी 2016 में बंद कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की इस पहल को सकारात्मक बताया है। चीन ने भी इसका स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने कहा, चीन इस कदम का स्वागत करता है। हम दोनों पक्षों के साथ हैं और पेयोंगचांग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों को कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव खत्म करने के लिए एक मौके की तरह देख रहे हैं। हम दोनों देशों के आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि इस प्रायद्वीप के मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी पक्षों को सकारात्मक रूप से आगे आना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत करना जारी रखना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता गेंग शुआंग। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलिस्तीनी सरकार ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद बंद करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बीते कल ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीन को अमरीका से आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई तारीफ या सम्मान नहीं मिला है। फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मुस्तफा बागोरती ने कहा है कि अगर इसे कार्यकारी किया गया तो इसका सबसे अधिक असर फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर पड़ेगा। उन्होंने बीबीसी को बताया,
I believe if he proceeds with this threat, it is the responsibility of the international community.
मुझे लगता है कि अगर वो अपनी धमकी को लागू करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी होगी कि वो इस कारण पैदा हुई कमी को पूरा करे। लेकिन कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि इन शरणार्थियों की मानवीय स्थिति, उनकी स्वास्थ्य संबंधी हालात और उनकी शिक्षा को केवल इस कारण प्रभावित किया जाए क्योंकि व्हाइट हाउस में एक व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपने पैसों से चला सकते हैं। फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मुस्तफा बागोरती के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इधर फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने भी अमेरिका के आर्थिक मदद बंद करने की धमकी को ब्लैकमेल कहा है और कहा है कि ये अमेरिका के बर्बरतापूर्ण, अमानवीय और अनैतिक रवैये को दिखाता है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हाले मरियम डिसाले ने घोषणा की है कि देश के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि मकलावी जेल को बंद कर दिया जाएगा और इस जगह को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। डिसाले ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके इस कदम से 2 सालों से चल रहे सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद होने वाली बातचीत सकारात्मक दिशा में होगी। इथियोपिया में हजारों प्रदर्शनकारी जेल में बंद हैं जबकि सैकड़ों की मौत हो चुकी है। इथियोपिया में मौजूद बीबीसी संवाददाता के अनुसार ये पहली बार है जब सरकार ने स्वीकार किया है कि जेलों में राजनीतिक कैदी बंद हैं। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। सोमवार को पुणे के पास कोरेगांव भीमा इलाके में जुटे हजारों हजार दलितों पर हुए हमले के विरोध में आज कई दलित और दूसरे संगठनों ने महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दलितों ने सड़कों, रेल पटरियों और बाजारों में धरने दिए। कई जगहों पर बसों के टायरों की हवा निकाल दी गई और दुकानें बाजार बंद रहे। मुंबई के कुछ शहरियों ने इस तरह अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
विनोद कुमार निगम एकदम प्रभावित हो गया है और रोटेशन एकदम खराब हो गया है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई है। दवा के लिए सब परेशानी, मार्केट पूरी बंद थी।
दिवंग मेहता घाटकोपर। ऑफिस इज वर्किंग, वी आर वर्किंग सो, बट स्टिल वी डोंट एबल टू वर्क इट एज अ रेगुलर डे बिकॉज मेनी थिंग्स आर शॉप्स आर ऑलरेडी क्लोज। मॉर्निंग इट वॉज गुड बट बिकॉज आफ्टरनून पूरा स्लैश था नहीं सर, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गेट बैक टू माई होम।
दीपचानी कांदीवली। सुबह जब आई तब इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट 10 o'clock, अदरवाइज वी वुडंट हैव स्टेप्ड आउट ओनली, बट देन द प्रॉब्लम स्टार्टेड। नाउ तो वी डोंट नो व्हाट वी विल हैव टू फेस व्हाइल गोइंग बैक। वी हर्ड दैट द ट्रेन्स आर नॉर्मल नाउ, बट आफ्टर गेटिंग बैक इन कांदीवली इट मे हैपन दैट वी आर अगेन फेसिंग प्रॉब्लम। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द सिचुएशन।
अभिजीत पाटिल। Somebody fought for somebody else and after 200 years they are keeping a city hostage for absolutely nothing basic.
ये थी मुंबई के चंद लोगों की आवाज़ें। दलितों पर पुणे में हुए हमले के लिए समस्त हिंदू अगाड़ी और शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नाम के दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों के दो नेताओं 85 वर्ष के संभाजी भेड़े और मिलिंद एकबोटे के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिन भर के घटनाक्रम पर मैंने कुछ देर पहले मुंबई में BBC मराठी के संवाददाता जाह्नवी मुळे से संपर्क किया और पूछा कि राज्य भर से क्या खबर है।
पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर जो बड़े बड़े शहर है वहां पर खास करके विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिनमें मुंबई, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद और कोल्हापुर जैसे शहर शामिल है। लोगों ने रास्तों पर उतरकर जगह जगह प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो मांग है कि जिनकी जो कल्प्रिट वो मानते हैं या फिर जो अक्यूज है इस पूरे मामले में, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और इसी मांग को लेकर बहुत से संगठन रास्ते पे उतरे और जगह जगह पर उन्होंने चक्का जाम किया। साथ ही ट्रेनों को रोका गया कई जगहों पर और भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्त नजर आया हर एक जगह पर। और कोई बड़ी घटना नहीं हुई और ज्यादातर पर ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल तरीके से ही दिखाई दिए, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान भी प्रॉपर्टी का हुआ है, जैसे बसों को तोड़ा गया है।
हाँ, बस वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बाकी महाराष्ट्र का तो आपने बताया, लेकिन जो तस्वीरें मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं उनसे पता चलता है कि नीले झंडे लिए हुए दलित सड़कों पर, महिलाएं पुरुष सब उतरे हुए थे। मुंबई में क्या देखा आपने?
जी, मुंबई के दो इलाकों में दो काफी अलग तरीके का माहौल हमने देखा। जहां तक पश्चिमी इलाके की, पश्चिमी उपनगरों की बात अगर करें तो वहां पर प्रोटेस्ट थोड़ा पीसफुल नजर आया, लेकिन पूर्वी इलाकों में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहा, जहां पर बेस्ट की बसेस को भी निशाना बनाया गया है। पूरे दिन भर में जो हमारे पास खबर आई है बेस्ट की तरफ से, 52 बसेस को नुकसान हुआ है और 4 ड्राइवर्स थे उनको वो मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। उसी के साथ लगभग 110 ट्रेन सर्विसेज जो थी सेंट्रल रेलवे की वो भी बंद करनी पड़ी। थोड़ा थोड़ा समय रख के जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से 8 बार मुंबई की सेंट्रल रेलवे की ट्रेन रोकी गई। लेकिन पूरा माहौल जो यातायात पूरे शहर में है वो पूरी तरह से शुरू है। 4-5 घंटों तक मेट्रो भी बंद थी, 4-5 घंटों तक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो पूर्वी उपनगरों से जाता है वो भी बंद था।
लेकिन अब दलित संगठनों ने इसको शायद वापस ले लिया है उसको। आपकी प्रदर्शनकारियों से बात हुई, क्या वो क्या कह रहे, किस बात पे क्यों नाराज हैं और कब तक ये नाराजगी चलेगी, कुछ आप अंदाजा बता सकती हैं?
जी, प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि भीमा कोरेगांव में जो कुछ भी 1 जनवरी के दिन हुआ है उसके पीछे जो संगठन है जिनके नाम बताए जाए हैं, 2 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है जिनमें संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे, ये 2 नाम है, तो इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनके इस पूरे घटनाक्रम की इंक्वायरी की जाए और एक फेयर ट्रायल भी हो, ये भी उनकी मांग है।
ये थी मुंबई से हमारी संवाददाता जाह्नवी मुले, जो बता रही थी कि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे के बारे में पुलिस ने FIR दर्ज किया है। आइए सीधे चलते हैं पुणे, जहां से BBC मराठी के संवाददाता मयूरेश कुन्नूर इस वक्त हमारे संपर्क में हैं। मयूरेश, संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे ये कौन हैं?
जी, ये दोनों महाराष्ट्र की राजनीति में, हिंदुत्ववादी राजनीति है, इसमें एक जाने माने नाम है। दोनों अपने अपने अलग अलग संगठन करते हैं। संभाजी भिड़े, इनका उनकी उम्र 80 से भी ज्यादा है। इनको संभाजी भिड़े गुरुजी करके पुकारा जाता है। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र के सांगली में वो रहते हैं और उनका बड़ा संगठन है, यूथ है, और वो शिवाजी महाराज के सब लोग कहलाते हैं और अलग अलग कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। दुर्गा माता दौड़ करके है जो नवरात्रों के दिनों में होती है, या फिर रायगढ़ का उत्सव जो होता है वो उनका रहता है। लेकिन कभी कभी ये विवादों में भी रहे हैं। महाराष्ट्र में मिरज और सांगली में एक दंगल हो चुकी थी गणेशोत्सव के दौरान, उस वक्त भी उनके कुछ कार्यकर्ताओं का नाम था। उसके बाद और भी कुछ पुणे में वारी के वक्त भी ऐसा ही हादसा हुआ था। तो ये हमेशा जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा मानते हैं, लेकिन विवादों में रह चुके हैं। एक बात ये कि नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस आदि इन जैसे नेताओं भी इनके नाम का जिक्र हमेशा करते रहे।
हाँ, वो एक वीडियो जो उपलब्ध है उसमें नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी इज्जत इनको दी जाती है हिंदुत्ववादी संगठनों में। क्या इनके खिलाफ जो FIR हुआ है उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, गिरफ्तारी वगैरह कुछ अभी हुई है?
जी नहीं, अब तक नहीं हुआ है। कहना यह है कि जो भी भीमा कोरेगांव में हुआ उससे पहले, उस वक्त उस इलाके में बड़ू नाम का एक गांव है और वहां के एक समाधि के ऊपर कुछ विवाद चल रहा था। भिड़े गुरुजी और उनके साथ मिलिंद एकबोटे, ये और एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, कभी पुणे में चुनाव भी लड़ चुके हैं
जी।
वो भी हमेशा विवादों में रह चुके, तो इनके कार्यकर्ता है वो वहां पे जाके लोगों को बोल रहे थे, इसके बारे में कह रहे थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। और बल्कि वहां पे नहीं, लेकिन पुणे शहर के पिंपरी नाम के पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर
FIR हुआ है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, तो हमारे पास मयूरेश समय थोड़ा कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पारित किए जाने के बाद 3 तलाक विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, मगर इससे पहले कि इस पर चर्चा शुरू हो पाती हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस इस विधेयक को राज्यसभा की स्थायी समिति में भेजना चाहती थी। इस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एतराज जताया। सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका था और इसे राज्यसभा में पारित होना था। मगर जैसे कानून मंत्री ने बिल पेश किया, पूरा विपक्ष हंगामे पर उतर गया, जिसकी वजह से उपसभापति को कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की धमकी देनी पड़ी। कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने बिल में संशोधन के लिए इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, मगर सरकार ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। तीन तलाक के मुद्दे पर बिल पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक बिल लोकसभा में पास होने के बावजूद यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम महिला को दहेज के लिए 3 तलाक दे दिया गया।
ये बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 तीन तलाक को गैर कानूनी कहा, असंवैधानिक कहा, और दो जज जस्टिस खेयर ने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सदन से अपील की कि कृपया करके कानून पारित करिए, तब तक हम इसको 6 महीने के लिए रोक लगाते हैं।
इस दौरान कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाते हुए हंगामा किया। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि ट्रिपल तलाक बिल को रोका जा सके। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिनभर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सर्विस से सुन रहे हैं। और अब पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका की एक तरफा कार्रवाई की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी मदद को बेवकूफ़ी कहा था और ये मदद बंद करने का ऐलान किया। बीबीसी उर्दू सर्विस की फरहत जावेद से एक खास इंटरव्यू में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अमरीका को धमकी वाली जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनिए बातचीत का अंश।
पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक जो है ना जी, वो अब किसी को खुश करना या नाराज होना या दोस्ती दुश्मनी के पराये से निकल चुका है। अब ये मामला चूंकि अभी इतनी हमारी 70 साल की रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, अब तो मामला यही है कि बेलाग हम गुफ्तगू करते हैं, खुलकर बात करनी है कि जी अगर तो वाकई अफगानिस्तान का अमन मकसूद है अमरीका को, तो उसके फ़र्क रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें हम मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तमाम जिम्मेदारी जो कि हमें नज़र आता है बार बार कि अमेरिका और अफगानिस्तान जो हैं वो अफगानिस्तान के अमन की तमाम जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश करेंगे, तो हम बड़े अदब से उन्हें कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आपकी मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन उन पर भी फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे कि अगर ताबुन से और इंटेलिजेंस शेयरिंग से मामला चलेगा तो उसके मुस्बत नतज फ़ौरन आएंगे, लेकिन अगर मनफी जबान इस्तेमाल मुस्तकिल की जाएगी और धमकी की जबान इस्तेमाल की जाएगी तो फिर पाकिस्तान की अवाम भी और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत भी और अफवाज भी उसके ऊपर बहरहाल जो है वो उनको सख्त तरीन तहफ़ात।
पाकिस्तान ये कहता है कि हकानी नेटवर्क समेत हम सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान अब तक अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पाया इस पॉइंट पर?
उनको ये जो इदराक है कि अब उनके लिए सिर्फ एक फेस सेविंग ही बाकी है और उस फेस सेविंग के लिए वो कभी पाकिस्तान को ज़्यादातर जो है वो ब्लेम करते हैं कि आसान उनका है, हालांकि पाकिस्तान ने उनको एक बेमिसाल तावुन जो है वो दिया है और उसमें इन तमाम सालों में अमेरिका को इस खत्ते में सिर्फ एक कामयाबी हुई है और वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से अलकायदा का खात्मा कर दिया गया।
तो आपने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सलामती के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो क्या कोई ख़तरा है यूनिलैटरल एक्शन का अमरीका की तरफ से?
जी, चूँकि सदर ट्रंप जो हैं वो एक बड़े पारा सिफ्त सदर साबित हो रहे हैं, तो उस इम्कान को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी नज़र में उसका इम्कान कम है किसी भी यूनिलैटरल एक्शन का, क्योंकि उसका अंदाज़ा ये भी है कि उस यूनिलैटरल एक्शन के बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास जो स्पेस है वो भी घट जाएगा। हम फिर कहेंगे कि अगर अमेरिका के पास ठोस एक्शनेबल इंटेलिजेंस है पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की, तो पाकिस्तान फौरी एक्शन लेगा।
ये थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर। तो दोस्तों, आज बुधवार है और वक्त है दुनिया जहान का। आज बात दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे अलगाववादी आंदोलनों की। पिछले साल स्पेन का कैतालोनिया प्रांत और इराकी कुर्दिस्तान आज़ादी की मांग के कारण चर्चा में रहे, मगर आज से नहीं, पिछले कई सालों से दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपने लिए नए और आज़ाद देश की मांग करते रहे हैं। आखिर लोगों में अलगाववादी भावना क्यों बलवती हो उठती है और विश्व समुदाय कैसे तय करता है कि किस अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करना है और किसका नहीं? इस बार साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ ढूंढ रहे हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब।
दुनिया जहां।
दुनिया जहां।
ये आवाज है बार्सिलोना की सड़कों में कैटालोनिया को स्पेन से अलग करने की मांग में नारेबाजी कर रहे लोगों की। पिछले साल के आखिर में पूरी दुनिया की निगाहें स्पेन पर टिकी रही। ये घटनाक्रम पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि कई देशों के अंदर अलग राष्ट्र की मांग उठती रही है। कहीं पर इस मांग को ताकत के दम पर दबाया जाता है तो कहीं स्वायत्तता और अधिकार देकर मनाया जाता है। कश्मीरी, बलोच, पख्तून और इराकी कुर्द लंबे समय से अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में कई सालों तक तमिल देश के लिए हिंसक संघर्ष चला। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोग अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। चेचनिया में भी अलग देश की मांग कायम है। यूरोप की बात करें तो कैटालोनिया ही आजादी नहीं चाहता। स्कॉटलैंड में भी तबका ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की भावना रखता है। कौन से कारण हैं जिनके चलते लोग हर हाल में अपने लिए अलग राष्ट्र चाहते हैं? क्या वजह है अलगाववाद पनपने की? यूरोपीय राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष पंत बताते हैं कि विकसित और विकासशील देशों में अलगाववाद के उभार की वजहें अलग अलग हैं।
ज्यादातर विकासशील देशों में अलगाववादी मूवमेंट इकोनॉमिक और आइडेंटिटी रिलेटेड होते हैं और विकसित देशों में इसका ज्यादा एलिमेंट इकोनॉमिक रिजेंटमेंट से होता है। और खासकर अभी जो आपने जिक्र किया कि ब्रिटेन में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि ये देश पिछले कुछ दशकों से विकसित देशों की कगार में थे। अब इनमें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, उसमें इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो ज्यादा उभर कर आती है।
यूरोप से बाहर निकले तो अलगाववादी विचारधारा के उभार के कारण भी बदल जाते हैं। यहाँ अलगाववाद की वजह पहचान से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत बताते हैं, बहुत से इलाकों में अलगाववाद की जड़ें उपनिवेशवाद के दौर तक जाती हैं।
जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े भूगोल पर कब्जा कर रखा था यूरोप की महाशक्तियों ने, और उन्होंने अपने साम्राज्य की जो हदें खींची या आपस में जो समझौते किए, बंटवारा किया दूसरों की जायदाद का, उसमें कई ऐसे राजनीतिक मानचित्र बने जिन्होंने एक ही परिवार के लोगों को अलग किया, कबीले के लोगों को अलग किया, एक भाषा बोलने वाले लोगों को अलग किया, और जबरन उन्हें ऐसे हिस्से में मिलाया जिसका हिस्सा वो कुदरती तौर पर नहीं थे। जब ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर आया तो ये प्राकृतिक मानचित्र एक राजनीतिक मानचित्र में कृत्रिम रूप से बदल गया। उसके बाद फिर ये हुआ, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो लोगों को अपनी औपनिवेशिक दास्ता से पहली वाली पहचान का अनुभव हुआ और आजादी की उस लड़ाई में उनके मन में ललक आत्मनिर्णय की बढ़ने लगी।
विस्तारवाद यानी कब्जा करने की नीति, ताकत के दम पर ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करके शासन चलाने का चलन नया नहीं है। यूनान के सिकंदर महान, मंगोलिया के चंगेज खान और मध्य एशिया के तैमूर लंग से लेकर 20वीं सदी तक विस्तारवाद ने कई बार दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स इरविंग बताते हैं कि दो विश्व युद्धों में जान माल के भारी नुकसान के बाद दुनिया के देशों को लगा विस्तारवाद पर रोक लगाने के लिए कुछ सिद्धांत बनने चाहिए।
Self-determination is an attempt to do better than that and to create some kind of justice in the process.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा महसूस किया गया कि लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। यह सभी को न्याय देने के लिए जरूरी था। इसे शुरू में यूएन चार्टर में भी डाला गया था। उस वक्त लोगों को लगा होगा कि यह तो काफी अच्छा विचार है, मगर इसके मायने क्या होंगे, इसे लेकर ज्यादा सहमति नहीं बन पाई।
Delegates representing 46 nations came to San Francisco on April 25th, 1945.
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिन सिद्धांतों पर हुई उनमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल था। मगर आज स्थिति क्या है? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अलगाववादी आंदोलनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के किसी नियम का पालन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत कहते हैं,
देखिए मुझे लगता है कि आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कोई कानून तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है, उस चार्टर में कुछ बातें बहुत बहुत सामान्यीकृत कही गई हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, हर विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो उपनिवेश है उनकी समाप्ति होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है उसके बाद दोहरे मानदंड इसमें अपनाए जाते रहे हैं कि वो चीन का मामला हो, फार्मोसा वाले, ताइवान वाले चीन का और जनवादी चीन का, वो वियतनाम का विभाजन हो, जर्मनी का विभाजन हो, पूरे शीत युद्ध के दौर में कोई भी ऐसी स्पष्ट नीति सैद्धांतिक या ईमानदारी की हमको संयुक्त राष्ट्र में देखने को नहीं मिलती है।
भले ही बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देश दखल नहीं देते, मगर कुछ मामलों में इनका हस्तक्षेप रहता है। उदाहरण के लिए सर्बिया के कोसोवो इलाके ने अलग देश की मांग की थी। सर्बिया ने इस आवाज को दबाने की कोशिश की तो संयुक्त राष्ट्र और नेटो की अगुवाई में सेनाएं कोसोवो की मदद करने पहुंच गईं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस डी मुनि कहते हैं ये भी एक कारण है जिससे अलगाववाद की भावना को उकसावा मिलता है।
ये है राइट टू प्रोटेक्ट, कि अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर एथनिक क्लींजिंग करेंगे, अगर आप लोगों को सामान्य सुविधाएं नहीं देंगे जो सब, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें निकल के आ सकता है। तो इससे भी जो समुदाय हैं, जो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उनको एक तरह से उकसावा भी मिला है, उनको लगता है कि यहाँ से हमको समर्थन मिल सकता है, तो वो भी एक एक तथ्य है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर की बात करें,
पिछले कुछ दशकों से अलिखित नियम सा बन गया है कि आप बहुत ही कम मौकों पर दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देंगे। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस अलिखित नियम का सम्मान नहीं करते। प्रोफेसर एस डी मुनि कहते हैं,
देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने हितों पे फैसला करता है, वहाँ कोई नैतिकता के आधार है नहीं। हम कह सकते हैं कि कागजों में लिखा है, संविधान की धाराओं में लिखा है संयुक्त राष्ट्र की, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा जब कोई प्रश्न सामने आता है तो उसका सीधा सवाल ये होता है कि ये करने से मेरा हित होगा कि नहीं होगा। जो नैतिक मूल्य और मान्यताएं हैं उनको उनकी भाषा में बात करते हैं कि हम इसकी वजह से बात कर रहे हैं, तो रेटरिक्स अलग है, रियलिटी अलग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का।
कई बार ऐसा भी होता है कि संबंध अच्छे न होने पर देश एक दूसरे के यहाँ अलगाववादी ताकतों के उभरने पर उन्हें समर्थन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन भविष्य क्या है? क्या कभी ऐसा होगा कि अलगाववाद की भावना खत्म हो जाएगी? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे सभी को संतुष्ट किया जा सके? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत कहते हैं,
मुझे लगता है कि ये अलगाववाद जो है ये बना रहेगा संसार में हमेशा, क्योंकि हमारी नस्लें एक नहीं है, हमारी भाषाएं एक नहीं है, हमारे धर्म एक नहीं है, और हमारे हित जो राष्ट्र राज्य के थे वो एक नहीं है। तो राष्ट्र राज्य की इकाई अपने राष्ट्रहित को तर्कसंगत साबित करने के लिए बहुमत का सहारा लेती है और अल्पसंख्यक अधिकारों का या उनके उनकी आकांक्षाओं का न कहें हनन उल्लंघन दमन होता रहता है।
यूरोप में 60-70 के दशक में कई अलगाववादी आंदोलन थे, मगर वे वक्त के साथ कुंद पड़ गए। मगर जिस तरह से पिछले साल अचानक कैटलोनिया का मुद्दा उभरा, उससे लगता है कि इस साल यूरोप में कई इलाकों के केंद्रीय सरकारों से झगड़े उभर कर सामने आ सकते हैं। जानकार मानते हैं कि आर्थिक मंदी का यूरोप के कई देशों पर असर पड़ा है और इससे अलगाववादी ताकतों को नया अवसर मिल रहा है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में रोहिंग्या संकट को लेकर भी पूरी दुनिया की नजरें म्यांमार पर होगी कि वो रखाइन प्रांत को लोकतांत्रिक ढंग से मुख्य धारा में ला पाएगा या नहीं। श्रीलंका में भी तमिल समुदाय को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों की रफ्तार कम हो गई है। नेपाल में मधेसी समुदाय की नाराजगी दूर करने की चुनौती नई सरकार पर होगी और साथ ही भारत में कश्मीर के मुद्दे पर भी सबकी निगाहें होंगी, जिससे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है।
दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखिएगा। अब समय तो बहुत कम है, लेकिन सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं और उनके पास खेल जगत की कुछ खबरें हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए।
बिल्कुल, क्रिकेट के मैदान पर ना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर हैं, वो साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में खेलना उनका संदिग्ध है। पिछले दो दिनों से वायरल फीवर से जूझ रहे हैं, तो वहीं शिखर धवन पैर में लगी चोट से पूरी तरह उभर चुके हैं और पहले मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो आपने एकदम गागर में सागर भर दिया। अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में दलित संगठनों के प्रदेश बंद का सीधा असर मुंबई और राज्य की अन्य जगहों की परिवहन व्यवस्था और कामकाज पर पड़ा है। कई जगहों से आगजनी और गाड़ियों को आग के हवाले करने की भी खबरें मिली हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन को फिर से शुरू कर दिया है। चीन ने उत्तर कोरिया के इस कदम का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी सरकार ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद बंद करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हाइले मरियम डिसाले ने घोषणा की है कि देश के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मकलावी जेल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जिस तरह लोगों की मौतें हो रही हैं उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। म्यांमार की सरकार न्यूनतम मजदूरी को 30% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकारी मीडिया ने कहा है कि नई मजदूरी लगभग $3.08 की होगी और ये व्यवस्था देश के उन सभी व्यवसायों पर लागू होगी जिनमें 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास और मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की मोहम्मद शाहिद ने। मैं राजेश जोशी आपसे विदा चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।